चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ विश्व में थी पाप की जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ
शांति ओम शांति सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग हम सभी भाई बहने कहाँ बैठे हैं घर में बैठे हैं स्कूल में बैठे हैं कॉलेज में बैठे हैं यूनिवर्सिटी में बैठे हैं या सतगुरु की दरबार में बैठे हैं कहाँ बैठे हैं कहाँ बैठे हैं ये भी लिस्ट निकल सकती है कहाँ बैठे हैं क्यों ये बाबा पूछते हैं क्योंकि हम ये शिक्षा जो ले रहे हैं ये शिक्षा हम बाप से ले रहे हैं टीचर से ले रहे हैं या सतगुरु से ले रहे हैं किससे ले रहे हैं या तीनों से ले रहे हैं क्या कहेंगे तीनों से ले रहे हैं या एक से ले रहे हैं हाँ क्या कहेंगे हम कहेंगे तीनों ही एक में है बस ये है उत्तर इसलिए ये घर भी है पाठशाला भी है कॉलेज है यूनिवर्सिटी है स्कूल है सतगुरु की दरबार भी है तो ये सारी जो शिक्षाएं हमें मिलती है ये तीनों की इकट्ठी मिलती है ऐसे नहीं कि अलग अलग मिलती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये बाप ने दी, ये टीचर ने दी, ये गुरु ने दी। वहाँ तो बाप, टीचर, गुरु अलग अलग होते हैं। कॉलेज में जाते तो केवल टीचर ही होता है, बाप नहीं होता है, गुरु नहीं होता है, वो केवल टीचर होता है। तो ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जहाँ तीनों हमको पढ़ाते हैं और डिग्री कितनी ऊंची देते हैं। लक्ष्य हमारा कितना ऊंचा है, पढ़ाई कितनी ऊंची है, तो हम स्टूडेंट्स कोई कम थोड़ी है। हम भी कोई हल्के वल्के स्टूडेंट्स तो नहीं है ना। हाँ, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है। वहाँ पढ़ने वाले भी कोई साधारण लोग नहीं होते। तो हम भी इस यूनिवर्सिटी में साधारण लोग नहीं है। बाबा हमारी कितनी ऊंची महिमा गाते हैं, कितना नशा चढ़ाते हैं, स्वमान दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा इस स्वमान का अनुभव करते रहो, तो जो छोटी छोटी मायावी बातें आती है वो दूर हो जाएगी सहज। तो आज बाबा ने विशेष रूप से इस प्रकार का भी नशा चढ़ाया है और फिर याद भी दिलाया है कि कौन सा समय चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, कयामत का समय चल रहा है, सबके हिसाब किताब चुप्तु होने का समय चल रहा है। तो कितना हमें सावधान होना चाहिए कि हम कोई ऐसा विकर्म न करें जो 100 गुना सजा खानी पड़े। तो सावधान भी किया है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 30/4/2026 है। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ाते हैं। क्या है ये? तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बन तुम्हें पढ़ाते हैं। प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? आपको भी तो लक्ष्य मिला ना, जब आप भट्ठी में आए यहाँ तो पहले दिन ही शाम के समय लक्ष्य मिला कि इस भट्ठी में क्या क्या करना है, क्या बनना है। तो इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? तो हमें मिला है तो हमको दूसरों को भी वो लक्ष्य देना है। कौन सा? उत्तर है, हे आत्माएं अब पावन बनो। ये लक्ष्य सबको देना है। क्यों पावन बनो? पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। कयामत का समय है, सबके हिसाब किताब चुप्तु होने हैं, सबको वापस जाना है। इसलिए पावन बनो, क्योंकि पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो। अभी जो भट्ठी में आए हैं तो हम क्या कहेंगे, 4 रोज 5 रोज है ना भट्ठी में बैठते। तो भट्ठी में क्या करना होता है? और कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सोचना है। हमको 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो, तुम सबको 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद न आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाके, हीरा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये बच्चों को किसने कहा? किसने कहा ये रातू ने रात गवाई सो के दिवस गवाया खा के, ये किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हो, तो स्कूल में बैठे हैं तो ये कौन कहेगा? टीचर कहेगा। हाँ, स्टूडेंट्स को कहेंगे तुम सोते हो खाते हो पढ़ोगे कब? क्योंकि स्कूल में बैठे हो तो जरूर टीचर ने कहा। अब प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा या बाप ने कहा या सतगुरु ने कहा? तूने रात गवाई सो के, किसने कहा? ये वर्शंस किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है। पहले तो पिता ने कहा, पिता भी तो शिक्षा देता है ना, हमारा बेहद का बाप है जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, फिर शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा, तीनों ने मिलकर कहा, क्योंकि तीनों एक में है, थ्री इन वन। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा और सतगुरु ने भी कहा, ये तुम्हारी बुद्धि में है। जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है उनकी बुद्धि में है, और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में तो टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे, वो केवल टीचर है। ये है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना, क्योंकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भले वो स्थान छोटा होगा बड़ा होगा, परंतु पढ़ाई पढ़ाई जाती है ना, है तो पढ़ाई ना। तो पहले पहले ये समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं वो निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सदगति दाता है, वो हमको पढ़ा रहे हैं। ये सारी रचना, सारी दुनिया उसकी रचना है, ये सारी रचना उस एक रचयिता की प्रॉपर्टी है, उस एक रचयिता की सारी ये रचना प्रॉपर्टी है। अब रचना में सब आ गया, आत्माएं भी आ गई तो प्रकृति भी आ गई, जानवर सब आ गए, सब इस रचना की प्रॉपर्टी है, एक रचयिता की प्रॉपर्टी है। तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है, किसके पास? टीचर के पास तो जन्म नहीं लेंगे ना, किसके पास जन्म लेता है बच्चा? बाप के पास। तो तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास, तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वो बाप है जिसको ज्ञान का सागर नॉलेज फुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, जितनी महिमा गाओ उतनी कम। ज्ञान से ही सदगति होती है, मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। जो सच्चा ज्ञान है उससे सदगति होती है, पतित से पावन बनती है, बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसको बुद्धि में नहीं रहता है, कहीं भी किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये किसी स्टूडेंट की बुद्धि में नहीं रहता होगा कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी समझेंगे वो स्टूडेंट। ये वहां ही तुम, ये यहां ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है और तुमको ही माना, कौन खास तुम, तुमको ही समझाया जाता है खास भारतवासियों को। तो खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले है ही मनुष्य टीचर, दुनिया में मनुष्य टीचर ही पढ़ाते हैं। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है, हाँ पढ़ाते तो है, दुनिया का ज्ञान देते हैं, परंतु ऐसा भी नहीं वो ज्ञान देते हैं, और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो वो समझे कि हम आत्मा हैं। चलो आत्मा हमको पढ़ा रही है, आत्मा हम पढ़ रहे हैं, ये भी कोई ज्ञान उन स्टूडेंट्स को नहीं है। फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा हैं, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, फलानी नौकरी भी आत्मा ही करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो ये रहता है, और प्रोफेसर टीचर उनको क्या रहता है, उनको तो यही रहता है कि हम फलाना है, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है ना। मैं वाइस चांसलर हूँ, अभी आए थे एजुकेशन विंग में कम से कम 10 वाइस चांसलर आए थे, लेकिन बाबा कहते वो वाइस चांसलर भले है लेकिन मैं आत्मा हूँ ये तो पता नहीं था, यहाँ करके समझा। तो जब उनसे कहा, पहला लेसन लिया, तब उनसे पूछा आप कौन है, ऐसे नहीं कहा वाइस चांसलर, सीधा बताया हम आत्मा है। तो देखो ज्ञान बाबा का मिला उनको, तो वो तो झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम ये करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वो तो रॉन्ग है। हम मैं तो ये कौन कर रहा है, तो वो शरीर समझते, वो तो रॉन्ग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे ये शरीर लिया है, शरीर का नाम तो बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता है, आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। अब आत्मा का नाम नहीं बदलता, आत्मा का नाम एक है, शरीर बदलती रहती है आत्मा पर, शिव बाबा की आत्मा का ही नाम शिव है। ये सारी दुनिया जानती है, बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं, शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस एक ही उनका मुख्य नाम है शिव, बस उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता है। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना टीचर का, नाम लेंगे, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, मैं फलाना हूँ कहेंगे लेकिन वास्तविकता क्या है, वो आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है, कैसे कैसे पाठ बजाती है, संस्कार अनुसार, जो भी पाठ बजता है सब संस्कार अनुसार पाठ बजता है। परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। अभी आत्मा केवल लिख दे तो धंधा कैसे करेगा, हाँ तो इसीलिए धंधा तो शरीर के नाम पर ही पड़ता है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई, जब ये कहते हैं कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं तो हमारी बुद्धि कहाँ चली गई। हम आत्मा उस बाप के बने हैं, पढ़ाते हैं तो जरूर हम उनके बने हैं, तो वहाँ चली गई उसके पास कि हम उनके बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं, उनका नाम है शिव। अब शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परम पिता परम आत्मा कहा जाता है, वो सभी आत्माओं का बाप है। अब प्रश्न उठता है वो सभी आत्माओं का बाप तो है, परंतु उनकी जयंती कैसे मनाएं, वो आते हैं तो जयंती कैसे मनाएं, हाँ कैसे मनाते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है वह गर्व में आती है। हाँ, कैसे आती है? शिव बाबा की जयंती कैसे मनाते हैं? क्या शिव बाबा की आत्मा कोई शरीर में प्रवेश करती है या गर्व में आती है? अब ऊपर से आती है ये किसको मालूम नहीं पड़ता। तो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन में प्रवेश होते थे ये तुरंत पता नहीं चलता था, लेकिन हाव भाव से समझ जाते थे शिव बाबा विराजमान है इस तन में। तो बाबा कहते हैं आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, ये किसको मालूम नहीं पड़ता है। ना आत्मा का पता चलता है और शिव बाबा आते उसका भी पता नहीं चलता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं, अब उनकी आत्मा कैसे आती है? शिव बाबा की आत्मा तो परकाया प्रवेश करती है और आत्माएं तो अपने वो गर्भ में अपने शरीर में प्रवेश करती है। अब धर्म, अब क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं, अब उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से ही आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उसने पूर्व जन्म लिया हो और फिर क्राइस्ट फिर वो जीसस के तन में आए, वो तो अब वो आत्मा भी ऊपर से ही आती है। उनकी आत्मा भी पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। जो भी धर्म पिताओं की आत्माएं आती है उन्होंने कोई विकर्म किया हुआ नहीं है, इसलिए वो ऊपर से ही आती है। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं तब विकर्म होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती है। ये भी कर्म की गति है ना, नई आत्मा कोई भी दुख भोग नहीं सकती है। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विकर्म करने लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे, भारत को क्या कहते हैं? अविनाशी खंड। ये अविनाशी खंड है और कोई खंड उस समय था ही नहीं, एक भारत खंड ही था। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ तो शिव को कहा जाता है न कि शंकर को। वो जब गीत गाते हैं ना भोलानाथ की, बाबा कहते हैं महिमा गाते हैं तो वो शंकर को समझ लेते हैं। अब भोलानाथ तो शिव को कहा जाता है न कि शंकर को। भोलानाथ ही बिगड़ी को बनाने वाला है, तो कौन है बिगड़ी को बनाने वाला? शिव बाबा। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की वास्तव में कोई महिमा है नहीं। बिगड़ी को बनाने वाला एक शिव बाबा है तो सारी महिमा उनकी ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं शिव बाबा? मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। उनको कहते हैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर, कहते हैं तुमने जन्म अपने पूरे किए, अभी खेल पूरा हुआ। ये पुराना चोला पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं, अब किसको याद करें? ये सब खलास होने वाले हैं, है ना। उस दिन गीत भी कितना सुंदर, कौन है माता कौन है पिता, हाँ तो कौन है ये सब? कोई नहीं, ये दुनिया तो खत्म हुई की हुई। तो बाबा कहते हैं अब किसको याद करें? खत्म होने वाली चीज को तो याद नहीं किया जाता। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है ना, जो चीज खत्म होने वाली है उनसे दिल धीरे धीरे हटानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है, ये फिर है बेहद की बात, पुरानी दुनिया से ही दिल हटानी है। वो तो केवल एक पुराने घर से दिल हटाते, या तो पुरानी दुनिया से दिल हटानी है स्वयं, ये फिर है बेहद की बात। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, परंतु बिगाड़ा किसने? शिव बाबा तो नहीं बिगाड़ेगा, वो तो बिगड़ी को बनाता है, तो बिगाड़ा किसने? रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार किसको समझते हैं? लोग भ्रष्टाचार करप्शन को समझते हैं, रिश्वत देना करप्शन, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। और बाबा किसको कहते हैं? बाबा कहते हैं लोग तो भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, एडल्ट्रेशन, मिलावट कुछ करते हैं या घूस देते हैं, चोरी ठगी, ये सब बाबा कहते हैं ये सब करप्शन है। तो बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार कौन सा है? वो तो सब है ही करप्शन, भ्रष्टाचार, लेकिन बाबा किसको भ्रष्टाचार कहते हैं? बहुत बड़ी बात। बाबा कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना, विकारी बनना, ये सबसे पहला भ्रष्टाचार है। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे, याद करो हम कौन थे? देवी देवता थे सतयुग की प्रवृत्ति मार्ग में। कहते हैं दुनिया वाले क्या कहते हैं जब हम उनको कहते हैं ना, तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी फिर से पवित्र बनना है, तो फिर वो क्या कहते हैं? पवित्र होने से फिर विकार विगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? हम पवित्र बन जाएंगे तो फिर विकार के बिना बच्चे कैसे पैदा होंगे? अब उनको बोलो हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते हैं, क्योंकि हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं वो योग बल से करते हैं, बाहुबल से नहीं करते हैं, विकारों के बल से नहीं करते हैं। हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं? जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। ऐसे नहीं कि सिर्फ राजा रानी योग बल से बच्चे पैदा करते, प्रजा भी सारी योग बल से बच्चे पैदा करती होगी ना, जानवर भी ऐसे ही करते होंगे, वहां विकार की तो बात ही नहीं है। यहाँ है संपूर्ण विकारी, सतयुग में विकार होते नहीं, उसको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य, ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ राज्य। अभी तो है रावण राज्य, शिव बाबा की पूजा होती है। क्यों शिव बाबा की पूजा होती है? बाबा कहते हैं शिव बाबा की पूजा होती है जिसने स्वर्ग स्थापन किया। क्यों इतनी पूजा होती है? क्योंकि स्वर्ग स्थापन किया, तो जिसने स्वर्ग स्थापन किया उसकी पूजा तो जरूर होनी चाहिए। रावण जिसने नर्क बनाया उसको तो जलाते आते हैं, उसकी पूजा थोड़ी करते हैं, उसको तो जलाते हैं, और जिसने स्वर्ग स्थापन किया उसकी पूजा करते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ ये भी किसको पता नहीं है, तभी तो रावण आया, तो ये भी किसी को पता नहीं है कि द्वापर कब शुरू हुआ। ये भी समझ की बात है ना, ये है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वो है ईश्वरीय दुनिया, उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता है, और ये है नरक पतित दुनिया। अब ये बातें भी समझेंगे वो, कौन समझेंगे? सब नहीं समझेंगे, कोई नया आकर के सब बैठे और वो बातें ये नहीं समझेगा। तो बाबा कहते हैं ये कौन समझेंगे, ये बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। अब रोज पढ़ेंगे नहीं, कभी हफ्ते में एक दिन आए, महीने में एक दिन आए और बैठ के या मुरली सुनी तो उनको पूरा समझ में आएगा नहीं। तो बाबा कहते हैं ये बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं, अभी कई बाबा को लिखते थे, बाबा हम जा रहते हैं ना वहाँ सेंटर नहीं है, तो फिर बाबा क्या कि बाबा वहाँ सेंटर नहीं है तो हम किससे डायरेक्शन ले रहे, तो क्योंकि सेंटर नहीं है तो टीचर नहीं है तो हम तो बहुत दूर रहते हैं तो किससे डायरेक्शन ले रहे। तो बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ी है, तो बाबा क्या कहते हैं अरे हेड ऑफिस तो है ना, हेड ऑफिस तो है ना, तुम आओ मधुबन, मधुबन में आकर के डायरेक्शन लो। हाँ स्कूल नहीं है सेंटर नहीं है तो क्या मधुबन आकर के डायरेक्शन नहीं ले सकते, होता है ना, अभी तो ऐसे ही है, पहले सेंटर उसके बाद जो सब जोन फिर जोन, अगर नहीं कोई बात सुलझती है तो हेड ऑफिस में आओ, हेड ऑफिस आपको उसका आंसर देगा। तो अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ, बड़ी बात तो नहीं है, है बाबा बड़ा बाबा बैठा है। सृष्टि चक्र को तो सेकंड में समझाया जाता है, सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग ये भी पास्ट हुआ। सृष्टि चक्र समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पास्ट हुआ, अभी है संगम युग, नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है, हर एक का हक है पढ़ना। उस समय ये क्यों बाबा को कहना पड़ता था कि हेड ऑफिस है ये सब, अभी तो फोन है, उस समय फोन की भी बात नहीं थी ना, फोन थे ही नहीं, अभी तो सहज है, फोन द्वारा भी कितने हल मिल जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते थे आप कर हेड ऑफिस में बात करो पूछो। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया के में जाने के लिए तुमको पढ़ना है, हर एक का हक है पढ़ना, हर आत्मा का हक है ये ज्ञान पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, अभी कई बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा एक हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। विदेश के भी बच्चे आते थे, बाबा हम तो विदेश में रहते हैं, कोई बात नहीं बच्चे विदेश में भी रहो, मुरलियां लेके जाओ, मुरली आपको वहां मिलेगी। बाबा भेजते थे विदेश में भी, मुरलियां भेजते थे, भले लेट पहुंचती थी लेकिन भेजते थे बाबा। अभी तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो अभी तो समय बदल गया। तो बाबा कहते हैं अच्छा एक हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी, पहले सात रोज भट्टी में जरूर रहना है, भले सात रोज आएंगे परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। बाबा ये भी जानते मधुबन में आते हैं या सात रोज भट्टी में रहते हैं परंतु फिर घर गए तो कई बार तो सब भूल जाता है, और कईयों की बुद्धि में थोड़ा रहता है तो सब एक जैसे तो नहीं होते। सात रोज भट्टी माना कोई की भी याद न आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी न हो, सुना भट्टी वाले, देखो बाबा कहते कोई से भी पत्र व्यवहार नहीं, कोई से फोन पर भी बात नहीं, मन का मौन, मुख का मौन, मोबाइल का भी मौन, है ना, सबका मौन है ना, तीनों ही मौन है कि नहीं। भट्टी वाले हाथ उठाओ, सभी भट्टी वाले देखो, हाँ तीनों ही मौन है ना। हाँ तो बाबा कहते हैं कोई से पत्र व्यवहार आदि भी न हो, सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते, यहाँ पतितों को पावन बनना है, ये पतित पना भी रोग है, ये काम विकार बाबा कहते ये भी एक रोग है, आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, नफरत आनी चाहिए ना, आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग बिठाना पड़े, नयों को तो ऐसे बाबा के पास नहीं ऐसे बिठाते थे, उनको अलग बिठाना पड़े, कोई का भी संग न हो, इसीलिए देखो जहाँ तीन रोज चार पांच रोज अलग ही है ना, सबका आपका सब कुछ अलग है। तो बाबा कहते कोई का भी संग न हो, बाहर जाएंगे फिर उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। घर जाते हैं फिर तो अब हर वक्त तो पावन के हाथ का तो भोजन अभी मिलता है, पता नहीं क्या क्या खाते होंगे। तो बाबा कहते बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। ये सब होता है। सतयुग में देवताएं तो पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं, उनके लिए तो खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को फिर पतित छू न सके, जो भी आते हैं ना भक्त आते हैं वो मूर्ति को कभी छू नहीं सकते। जो कुछ भी उनको भेंटा चढ़ानी है वो पुजारी को देंगे, पुजारी ही रखेगा देवता के आगे, वो खुद नहीं रखेंगे। तो इसीलिए वो तो हाथ भी लगा न सके मूर्ति को। देवताओं को फिर पतित छू न सके, इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी है। शरीर तो विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है, या भ्रष्टाचार का अर्थ ही दूसरा है ना, तो इसलिए उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर तो विष से ही बना हुआ है, वो भी विकार की पैदाइश है। कलयुग में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी विकार की पैदाइश न हो। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पहले आत्मा को पवित्र होना है फिर शरीर भी पवित्र चाहिए, इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सा विनाश हो जाने हैं। आत्मा पवित्र बन गई तो वो अपवित्र शरीर में रह नहीं सकती है, इसलिए सब इम्प्योर अपवित्र शरीरों का विनाश हो जाना है, सबको वापस जाना है। ये है कयामत का समय, सबको पवित्र बन वापस जाना है। ऐसे कोई भी वापस जा नहीं सकता है, या तो योग बल से पवित्र बनना है या तो सजा बल से। सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होली का मनाते हैं, है ना, होली मनाते हैं तो एक दिन पहले होलिका का दहन होता है। तो बाबा कहते होलिका मनाते हैं, यहाँ पांच तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, उस चित्र में क्या दिखाते श्री कृष्ण को, नर्क को लात मार रहा है और स्वर्ग हथेली में है। तो श्री कृष्ण का चित्र है ना, नर्क को लात मारना होता है, नर्क को लात मारना होता है। इसलिए श्री कृष्ण वो एग्जाम्पल है कैसे उसकी आत्मा ने नर्क को लात मारा। तो बाबा कहते हैं श्री नर्क को लात मारना होता है, क्योंकि क्यों नर्क को लात मारना होता है, क्योंकि सतयुग में जाना है। तो जहाँ जाना होता है तो सिर वहां होना चाहिए ना, उस तरफ जहाँ से ही जाना है उसको लात मारना है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सतयुग में जाना है, तो किसका मिसाल बाबा देते हैं, मुर्दे का मिसाल। डेड बॉडी को ले जाते हैं तो मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर के तरफ और पैर शमशान के तरफ करते हैं, फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान के तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह किस तरफ होना चाहिए, उस तरफ, स्वर्ग की तरफ तुम्हारा मुख होना चाहिए। शांति धाम और सुख धाम की तरफ तुम्हारा मुख होना चाहिए, और पैर किस तरफ होना चाहिए, दुख धाम की तरफ। तो पैर दुख धाम की तरफ और मुख शांति धाम सुख धाम की तरफ। वो तो मुर्दे की बात है, एक डेड बॉडी की बात है, जो मुख शमशान की तरफ और पैर दुनिया की तरफ, वो तो मुर्दे की बात है। यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है, ये पुरुषार्थ करना है कि पैर हमारे दुनिया की तरफ हो और सिर हमारा शांति धाम सुख धाम की तरफ हो। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी, है ना। कितनी सुंदर बात है कि स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। ये है, इसको क्या कहेंगे, स्वीट होम को याद करते करते स्वीट वो होम में चले जाएंगे। ये इसको बाबा कहते हैं, ये है बुद्धि की प्रैक्टिस। कोई अभी नहीं उड़ के जा रहे हैं, पर ये बुद्धि की प्रैक्टिस है। ये बाप बैठ सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को घर जाना है, है ना, घर जाना है या नहीं, यहीं रहना है इस दुनिया में, घर जाना है। ये पुराना चोला पुरानी दुनिया है, नाटक पूरा हुआ माना, नाटक पूरा हुआ माना क्या, और पूरा हुआ नाटक पूरा हुआ माना 84 जन्म का पाठ भी पूरा होना। क्योंकि नाटक पूरा होना माना 84 जन्मों का नाटक है, तो नाटक पूरा होना माना ही 84 जन्मों का नाटक है तो भी पूरा होना। तो ये भी समझाया है कि सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो आते ही बाद में हैं और धर्म में, जरूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामियों से बोधियों का कम जन्म होगा, क्योंकि इस्लामी पहले आए, अब्राहम सबसे पहले आया, तो उसके बाद फिर बुद्ध आया, फिर क्राइस्ट। तो इसलिए इस्लामी से बोधियों के कम होंगे जन्म, फिर बोधियों से, फिर उसके बाद क्रिश्चियन आए, तो क्रिश्चियन के जन्म बोधियों से और कम होंगे। गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी है, तो उनको 550 साल ही हुए हैं गुरु नानक को। अभी गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो वो थोड़ी 84 जन्म लेंगे, हिसाब किया जाता है ना। 5000 वर्ष में इतने जन्म, 5000 वर्ष में 84 जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म होंगे, 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे, आधा से भी कम, है ना, 84 तो नहीं होंगे, आधा से भी कम होंगे। अब ये हिसाब है ना, फिर बाबा कहते हैं, अब हिसाब थोड़ा बता के फिर बाबा कहते हैं, इसमें कोई कितने, कोई कितने एक्यूरेट तो कह नहीं सकते हैं। इन बातों में डिबेट करने से जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके कितने जन्म, उसके कितने जन्म, बाबा कहते क्या पढ़िए, तुमको कितने जन्म लेने, अपनी बात करो, है ना। कई क्या क्या प्रश्न करते हैं, जानवरों का क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, तो हम उनको पहले किसी को कहा, अच्छा तुमको जानवर बनना है क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। फिर जानवरों की बातें क्यों करते हो, आपको नहीं बनना है तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो इन बातों की डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना, फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना चक्र को जानना है, बाकी पाप नष्ट होंगे ही याद से, उसको महत्व दो ना। बाकी और छोटी छोटी बातों को क्यों महत्व दे करके उनसे बुद्धि लगाते हो। तुम्हारा काम है बाप को याद करना, फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। कईयों की बहुत जाती है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। बाबा कहते हैं सब फालतू बातें, उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, वेट एंड सी। सब बातें थोड़ी बताई जाती है, कुछ बातें तो देखनी भी होती है ना, तो इसीलिए वेट एंड सी। तो इसलिए फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना है और चक्र को जानना है, बाकी पाप नष्ट तो याद से ही होंगे। इसमें ही मेहनत है, इसीलिए भारत का प्राचीन योग क्या कहते हैं, जो बाप ही सिखलाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं होगी, देवताएं योग करेंगे क्या, उनके लिए तो योग की जरूरत ही नहीं है। कौन उनके कौन से विकर्म तो है नहीं जो पाप नाश करने लिए योग करेंगे। तो बाबा कहते हैं सत्यु त्रेता में तो योग की बात ही नहीं है, फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है। ये है हमारा कौन सा है, सहज राज योग। तो बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे, यही सहज राज योग है। मुझे याद करने से पावन बनेंगे, मूल बात है ही याद की। कोई भी पाप नहीं करना है, देवी देवताओं के मंदिर है क्योंकि पावन है। क्यों उनके मंदिर बनाए हैं देवताओं के, क्योंकि वो पावन है। पुजारी लोग तो पतित है, पावन देवताओं को स्नान आदि पुजारी कराते हैं। वास्तव में अब बाबा कहते वास्तव में पतित का तो हाथ भी नहीं लगना चाहिए, पर पुजारी जो उनकी पूजा करते हैं या कुछ भी स्नान आदि कराते हैं वो तो विकारी है। तो ये सब है भक्ति मार्ग की रसम रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, है ना, कितनी अच्छी बात। पवित्र बन जाएंगे तो फिर हम देवता बन जाएंगे। वहां तो पूजा आदि की तो दरकार ही नहीं रहती है, सब देवताएं होंगे, कौन किसकी पूजा करेगा, कोई किसकी पूजा नहीं करेगा। वहां तो पूजा आदि की दरकार ही नहीं रहती है। सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप, उनको ही भोला नाथ कहते हैं। मैं आता हूँ पतित दुनिया पतित शरीर में पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। भले बाबा कहते मेरा तन मुकरर है, ब्रह्मा तन है, परंतु कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कोई के शरीर में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं, पर क्या इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सर्वव्यापी है, सब में है, इसका मतलब ये नहीं है। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फॉर्म में भी लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। पहले फॉर्म में प्रश्न होते हैं, तुम्हारा शरीर का नाम क्या है, तो लिखेंगे तुम्हारे पिता का नाम क्या है, वो भी लिखेंगे। फिर तुम फिर कहेंगे तुम्हारी आत्मा का बाप का नाम क्या, वो तो उनको आता ही नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं फॉर्म में लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, परंतु समझते नहीं इसका मतलब क्या है। आत्मा के बाप का, शरीर के बाप का तो पता है, पर आत्मा के बाप का तो किसको भी पता नहीं है, तो समझते नहीं है। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा ना, हम सब ब्रदर्स हैं, फादर एक है, उनसे वर्षा मिलता है। किसका वर्षा मिलता है, जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर गाइड है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे कहाँ, स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, होलिका में जला देते हैं सब पुराना जो कुछ भी होता है ना, होली के एक दिन पहले होलिका जलाते हैं। तो इसलिए सब पुराने घर का जो पुराना पुराना कुछ भी है लकड़ी का सामान सब उस होलिका में जलाते हैं। होलिका होती है ना, तो शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएगी। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, वहां तो इतने सारे करोड़ों करोड़ों मनुष्य थोड़ी होंगे, बहुत थोड़े होंगे। तो समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। कौन कराते कलयुग का विनाश, बाबा कहते सब ड्रामा अनुसार होता है, कोई कराएगा नहीं कि सारा सबका दुख का बोझ वो उठाएगा क्या, ये सब ड्रामा अनुसार। तो सो तो क्लियर लिखा हुआ है, कहते हैं मिठरा घुर त घुरे, सिंधी शब्द है ये मिठरा घुर त घुरे। आप मुझे प्यार करो तो मैं भी तुमको प्यार करूं। तो मिठरा घुर त घुरे, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। तो बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ, अब कौन सा प्यार हम बाबा को दिखाते हैं, बाबा की सेवा करते हैं। तो जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं मनुष्य को देवता बनाने की, वो जास्ती प्यारे लगते हैं। मिठरा घुरत घुरे, जो बाबा श्रीमत देते उस पर चलते हैं, सेवा करते हैं, वो प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच वर्षा पाएंगे। वर्षा तो आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से, शरीर को वर्षे की तो बात ही नहीं है, आत्मा को वर्षा पाना है परमात्मा बाप से। आत्म अभिमानी बनना पड़े उसके लिए। कई बहुत भूले भी करते हैं, भूले तो सबसे होती है, तो कई बहुत भूले भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई है, पुरानी आदतें पक्की हो गई है, तो कितना भी समझाओ वो छूटती नहीं है वो पुरानी आदतें। अब उससे क्या होगा, अगर पुरानी आदतें नहीं छूटेगी, नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो बाबा कहते हैं उससे अपना ही पद कम कर देते हैं। पुरानी आदतें नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे, नहीं करते पुरुषार्थ, तो बाबा कहते हैं अपना ही पद कम कर देते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। डिबेट माना आर्ग्यूमेंट, बहस, ऐसे बहस करते, उसने ये किया फिर उसको काटा, फिर उसने उसका को उसको काटा, ये बाबा कहते डिबेट। तो उसकी डिबेट में, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती न जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विकर्म विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है, ये आदत बहुत जरूरी है, आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। वरदान, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। सदा समर्थ स्वरूप कैसे बनेंगे, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा, स्मृति से ही समर्थी आती है ना, तो ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। माया का सामना करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले वो स्मृति लानी पड़ेगी, मैं विजयी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया का सामना सहज कर सकेंगे। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। वो शक्ति तब अंदर से आएगी जब पहले उसकी स्मृति आएगी। तो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है, इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे। क्या कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूं, ये स्मृति सदा रहे। कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हों। हमारा ये ईश्वरीय कुल है, ये स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। स्लोगन, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जिद करना, सिद्ध करना, नहीं मैं ही सच्चा हूं, जरूरत ही नहीं है। तो सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यह व्यक्ति सारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज आखिरी है ये अव्यक्त इशारे का, ये महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। कल से फिर नए अव्यक्त इशारे होंगे। मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है। कौन सा विघ्न आता है सर्विस में? विघ्न कौन बनता है? मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है कौन सा? मैंने ये किया, मैं ही ये कर सकता हूँ, ये मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान। मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, इसको क्या कहा जाता है? ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान, तीनों का अभिमान आता है। ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान, इन रूपों में ही विघ्न आते हैं। इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना है। कैसे विघ्न समाप्त होंगे? एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी और नम्रचित निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती है। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरंकारी और नम्रचित निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। आज सत गुरुवार है, हम सब प्यारे बाबा के पास वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, क्योंकि भोग के समय हमारा एक बाबा से जो प्यार है वो प्यार बाबा के पास पहुंचता है, और साथ साथ बाबा भी बच्चों को देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे वतन में आए हैं और बाबा के पास कितने प्यार से बाबा को भोग स्वीकार करा रहे हैं। तो हर गुरुवार को या जब कभी भी भोग बाबा को लगाया जाता है उस समय हम सब को यही ध्यान रखना है कि हम सब वतन में बाबा के पास जाएं। कभी कभी हम नहीं संकल्प करते हैं तो बाबा उनको ढूंढते हैं कि मेरे फलाने बच्चे कहाँ हैं। तो आज हम सब मिलकर के बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। अच्छा, बट्टी के भाई बहने जो बाबा के पास वतन में जाएंगे वो हाथ खड़ा करो। सब वतन में जाने वाले हाथ खड़ा करो, क्योंकि अगर एक ने भी मिस किया तो बाबा ढूंढेंगे कि मेरे लाडले बच्चे कहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि आपको पता हो जयपुर म्यूजियम की बहुत विशेषताएं हैं, उसका हम जितना वर्णन कर रहे उतना ही कम है, क्योंकि बाबा के शुभ संकल्पों से ही वहां पर म्यूजियम बना और बाबा ही बच्चों को कहते थे, जब मधुबन में आते थे तो बाबा सभी पार्टी वालों को कहते थे पहले म्यूजियम में जयपुर जाना है। तो जब बाबा इतना याद किया, बाबा इतना प्यार किया और बाबा के शुभ संकल्पों का स्थान है तो बाबा सबको भेजते थे। कोई मिस करे उसको पूछते क्यों नहीं गए हैं, बाबा कहते थे देखो बाबा ने वहां पर आध्यात्मिक संग्रहालय बनाया है। फिर बाबा कहते थे राजयोग और हठ योग में क्या अंतर है, वहाँ हठ योगियों का भी एक स्थान है उसको भी देखना है, तो राजयोग से क्या फायदे होते हैं। तो इसलिए बाबा ऐसी भूमि को जो याद करे तो ऐसे बच्चे कितने ना सौभाग्यशाली है कि नहीं। अच्छा सब अपने लिए ताली तो बजाओ और जोर से बजाओ ना बाबा को थैंक्स। ऐसे थोड़ी है, ऐसा नहीं करना ढीला ढाला, बाबा को मन ही मन प्यार करना है, थैंक्स देना है। बाबा कितना प्यार करते हैं, तो अभी हम सभी चलेंगे बाबा के पास, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद पांच लाइन में अमृत होगा, एक लाइन होगी भाइयों की और दो लाइनें होंगी बट्टी के भाई और बहने। बट्टी के भाई यहाँ पर आएंगे अमृत के लिए और बट्टी की बहने इस कैमरा के पास आएंगे और बाकी दो लाइनें होंगी अन्य बहनों के। तो बट्टी के भाई बहनों को अमृत पिलाएंगे हमारी सुषमा बहन और चंद्रकला बहन। सुषमा बहन को तो आप जानते ही हैं कि जयपुर म्यूजियम में ही बैठ सेवा करती है और चंद्रकला का तो लौकिक अलौकिक जन्म कहाँ है, जयपुर ही है। लौकिक भी वही है अलौकिक भी वही है, बाबा की पालना भी यहाँ और जयपुर में होती रही है। शुरू से लेकर के बचपन से ही आप छोटी ही आयु में बाबा की गोदी में खेली है। बाकी हमारी सुषमा बहन, शीलू बहन, हम सब बाबा के साथ मम्मा के साथ के विशेष अनुभव किए हैं। मम्मा बाबा के साथ के, हमारी सुषमा बहन भी बहुत पुरानी और इन्होंने भी हमारे साथ रह करके मम्मा बाबा के साथ हम सब साथी हैं। सुषमा बहन, शीलू बहन और हम तीनों एक ही साथी हैं, साथ ही रहे हैं और साथ ही रहे वो बाद में बताएंगे हिस्ट्री। अभी तो बाबा को ही भोग स्वीकार कराते, फिर से बता रही है भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद पांच लाइन में अमृत होगा, एक लाइन उस स्टैंड की तरफ भाइयों की होगी, एक लाइन बट्टी के भाइयों की यहाँ पर होगी और बट्टी की माताओं की लाइन यहाँ कैमरा के पास होगी और बाकी दो लाइनें होंगी अन्य भाई बहनों की। अभी हम सभी चलते हैं बाबा के पास, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।
तेरी याद में
जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते
शांति, ओम शांति। आज शुक्रवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ, जैसे मैं वतन में बाबा के पास पहुंची, आज तो वतन का दृश्य अलग प्रकार से बहुत सुंदर था। वतन में एक गोल्डन पहाड़ी और वहां पर बाबा खड़े हैं। उस पहाड़ी के चारों ही तरफ चमचमाते स्टार्स की तरह लाइट भी निकल रही थी और सामने बाबा के अनेक बच्चे बाबा की दृष्टि द्वारा लाभ ले रहे थे। बाबा ने मुझे देखते कहा, आओ बच्चे। मैंने कहा, बाबा मैं तो सबकी याद प्यार लाई। बाबा ने कहा, जब तक आप पहुंचो बाबा के पास, पहले से ही बाबा के बच्चे वतन में बाबा उनको बुलाकर उनके संकल्प आते हैं, बाबा उनको वतन में इमर्ज कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा हमेशा हर बच्चे के संपूर्ण स्वरूप गोल्डन स्थिति को देख करके हर्षित भी होते हैं। कभी कभी बच्चे किन किन बातों में अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाते हैं, लेकिन बाबा का बच्चों से इतना प्यार है कि बाबा सबको उस स्वरूप के अंदर टिका देते हैं। तो जैसे बाबा की दृष्टि से सबके ऊपर रेस पहुंचती थी, तो सबका सुंदर गोल्डन श्रृंगार और जो साइज में चमकते हुए स्टार्स थे, उससे भी उनका बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा, अभी समय है बच्चों को अपने संपन्न स्वरूप और श्रृंगारे हुए स्वरूप के द्वारा खुद भी अनुभव करना है और विश्व की आत्माओं को भी ईष्ट बनकर के वैसे स्वरूप का अनुभव और उनके जो संकल्प हैं उनको साकार करने की जो सेवा बाबा ने बच्चों को दी है वो करनी है। फिर देखते देखते क्या देखती हूँ, वहां पर 3 ट्रांसपेरेंट रूम्स थे और उसके अंदर बहुत सुंदर लाइट जगमगा रही थी। तो सब बच्चे उस तरफ देखते हैं। बाबा ने कहा, जिसको जो पसंद आए उसमें जाए और इसमें हर एक को अपने उस लाइट के अंदर, वो लाइट ऐसी थी जैसे कि मिरर होता ना, शीशा होता है, उस लाइट में ऐसा है कि हर एक को अपना रूप दिखाई देता था। तो कुछ बच्चे पहले ट्रांसपेरेंट रूम के पास पहुंचते हैं। वहां जैसे पहुंचते हैं तो वहां पर क्या था, थोड़ा थोड़ा धुंधला और थोड़ी थोड़ी रेस जो थी वो ऊपर नीचे थी, तो कभी कभी जो लाइट तेज होती ना तो कम दिखता है, ऐसे लग रहा था। और कुछ बच्चे जब दूसरी तरफ गए तो वहां की जो लाइट थी कम धीमी चमकती थी, ऊपर की ओर नहीं जाती थी। और तीसरी तरफ जब कुछ बच्चे गए वहां तो पहुंच ही नहीं पाए, एक आदमी थे और वहां की जो लाइट थी वो इतनी पावरफुल, इतनी पीसफुल और उससे बहुत कुछ ऐसे सुंदर सुंदर वरदान निकल रहे थे। बाबा ने कहा, बाबा जानते हैं कि हर एक बच्चा बहुत प्यार से पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन पुरुषार्थ में कई बच्चे टेंशन, सोचना ज्यादा और पुरुषार्थ में कंफ्यूजन लाते, जिसके कारण बाबा ने जो उनको गोल्डन स्थिति का अनुभव कराया है तो उस स्थिति में कभी कभी बच्चे थोड़ा मूंझ जाते हैं अपने लक्ष्य को सामने देखते हुए उसके पास पहुंच नहीं पाते। और दूसरे प्रकार के बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कुछ करते हैं, पुरुषार्थ को भी टेंशन के रूप में ले लेते हैं और वो टेंशन के कारण अनुभव भी कर रहे हैं लेकिन वो अनुभव आधा होता है आधा नीचे रह जाता है। फिर तीसरे प्रकार के बाबा ने कहा कि बाबा जो चाहते हैं वो अभी समय अनुसार हर एक बच्चे को अपने पुरुषार्थ की जो विधि है उसको सिद्धि स्वरूप में परिवर्तित करना है। तो मैंने कहा, सोच रही थी बाबा कैसे करेंगे, बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी जो समय है ऐसा आ रहा है तो अपने सूक्ष्म पुरुषार्थ के मिशनरी को पावरफुल, क्लीन, क्लियर और बाबा से क्लियर कनेक्शन रहे तो अभी समय है। बाहरी पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं लेकिन सूक्ष्म पुरुषार्थ में अपने सूक्ष्म पुरुषार्थ की मिशनरी को बहुत पावरफुल बनाना है, जिसको बाबा कहते हैं विश्व की आत्माएं अपने इष्ट को ढूंढ रही हैं, उसके लिए बच्चों को एक तो स्थिति को सूक्ष्म पावरफुल क्लीन बनाना है। दूसरा बाबा ने कहा अवतरित आत्माएं हैं और बाबा ने कहा कि बच्चों को संदेशवाहक बन करके सारे विश्व के अंदर जैसे बाबा भ्रमण करते हैं ऐसा ही संदेशवाहक बन करके विश्व के अंदर भ्रमण करते हुए हर एक आत्मा को उनके वाइब्रेशन के द्वारा, आत्माओं को योगी वाइब्रेशन के द्वारा अनुभव कराना है। बाबा ने कहा बाबा तो एडवांस पार्टी को साथ लेकर के विश्व की सारी परिस्थितियों का अवलोकन और साथ साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में किस प्रकार से सूक्ष्म साइंस की मशीनरी द्वारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को अपनी सूक्ष्म स्वस्थिति और साइलेंस की स्थिति द्वारा ये कार्य करना है जो लास्ट में आगे चल करके ऐसी जो समय आने वाला है उसमें मदद करेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे तो सब अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन अभी समय अनुसार सूक्ष्म की ओर जाएं, बाहरी रूप का बहुत कर रहे हैं लेकिन सूक्ष्म थोड़ा कम है, उसको बैलेंस बढ़ाना है। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया, भोग के बाद फिर बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया। फिर जैसे कि मैंने बाबा को बताया, बाबा आज बच्चे आए हैं आपके संकल्प की भूमि से, तो बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए कहा इन बच्चों को भी नशा रहता है कि बाबा ने ऐसा स्थान पर बच्चों को बिठाया है और बच्चे बाबा के संकल्पों को साकार करने के लिए शुभकामनाएं भी रखते हैं। फिर बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए एक तरफ निमित्त, सामने टीचर्स, फिर सब भाई बहनों को इमर्ज करते हुए बाबा ने सबको गोल्डन पुष्प दिया और बाबा ने कहा सब बच्चों को ध्यान रखना है कि हमें गोल्डन स्वरूप के अंदर रह करके अपनी स्थिति को गोल्डन और प्योर और पावरफुल बनाना है। फिर बाबा ने उन बच्चों को भी इमर्ज किया जिनके भोग थे, उनको दृष्टि देते हुए दृष्टि से भी उनको संकल्पों से उनको अनुभव कराए, फिर सबको याद दिया ओम शांति। जैसा कि बताया 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन उधर